अभी हमारे बीच में उपस्थित है, हमारी आदरणीय वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका दीपा दीदी जी, जो बचपन से ही इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीकॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर 35 वर्षों से आज मुंबई विलेपार्ला सेंटर पर समर्पित रूप से वो सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल विंग की हमारी वो सीनियर फैकल्टीज भी है, साथ साथ वो ट्रेनर भी है और 35 वर्षों के उस परमात्मा के साथ के अनुभवों के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश लेकर अपने अनुभवों से ज्ञान से अनेकों के जीवन के प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो ऐसे ही आदरणीय दीपा दीदी जी विशेष आज भारत में अलग अलग कंपनीज में जैसे कि अतुल लिमिटेड वलसाड़, पार्ले प्रोडक्शन, रिलायंस कंपनी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे अलग अलग कंपनीज में दीदी जी सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर सक्सेस, सेल्फ ओरिएंटेशन वर्कशॉप, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पर प्रोग्राम्स कराते हैं और सभी को एक सही मार्गदर्शन करते हैं। तो आज विशेष हमारे साथ मार्गदर्शन करने आए हैं परमात्मा के परिचय। आज हम सभी उस परमात्मा को बहुत दिल से याद करते हैं, अलग अलग व्रत उपवास करते आए हैं और उसी को हम ढूंढते हुए आज आप सभी इस सभा में उपस्थित हैं और सुबह आपने सुंदर मेडिटेशन भी इस हॉल में किया हुआ ही है। तो उस परमात्मा के सत्य परिचय को हम पहचान कर उनसे बहुत सहज रीति से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो आज हमारी बहनें भी उनको तिलक और तुलसी पौधा देकर उनका हम स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय दीपा दीदी जी,
ओम शांति। कल से हम बहुत सारी अच्छी बातें भी सुन रहे हैं और परमात्मा के इस ज्ञान के द्वारा जो आध्यात्मिक समझ हमें मिलती है उसको जीवन में हम प्रैक्टिकल में कैसे धारण कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हमारी दीदियों से आपने बहुत अच्छी पॉइंट्स या कहें प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करने के लिए युक्तियां भी सीखी होगी। सुबह हमने राजयोग का पहला सत्र हमारी आदरणीय गीता दीदी से भी सुना, जहां हमने स्वयं का परिचय प्राप्त किया। जो आप विशेष कल से यहाँ आए हुए हैं, ऐसे तो भारत के अलग अलग स्थानों से आप आए हैं, तो कोई ना कोई सेंटर के द्वारा आपको निमंत्रण मिला। हमारे सेंटर पर जो भाई बहन आते हैं, आपके जैसे ही कारोबार में व्यस्त हैं, परिवार संभाल रहे हैं और साथ साथ इस राजयोग का अभ्यास कुछ वर्षों से कर रहे हैं, उन्होंने भी आपको निमंत्रण दिया होगा। तो हर एक कोई ना कोई के निमंत्रण से आए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि निमित्त कोई ना कोई आपके लिए बना होगा, लेकिन आप सब ईश्वर के निमंत्रण से यहाँ पहुंचे हैं। और ईश्वर का ये सुंदर निमंत्रण जो आपको मिला है और जो यहाँ तक आपको पहुंचाया है, क्योंकि कईयों ने प्लान्स तो बनाए, टिकट भी निकाली, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। तो परमात्मा का निमंत्रण आपको मिला, आपका श्रेष्ठ भाग्य भी था कि ईश्वर के निमंत्रण से आप पहुंच गए। अब जिसने आपको ये निमंत्रण दिया है उसका परिचय भी जानना जरूरी है। ऐसे तो हम कहेंगे ईश्वर को तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब उनको बहुत प्यार से याद करते हैं ना। हम सब का उन परमात्मा के साथ एक बहुत समीपता का एक निजी संबंध है और हम सब उनको दिल से याद भी करते हैं और फरियाद भी करते हैं, है ना। फरियाद भी करते हैं ना, याद ज्यादा या फरियाद ज्यादा, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर सच्चाई से कहें तो क्या कहेंगे? फरियाद ज्यादा है, है ना? क्योंकि याद ज्यादा कब करते हैं, कब करते हैं याद, ज्यादा याद कब करते हैं? जब कोई हमारे जीवन में कोई परीक्षा है, कोई दुख का प्रसंग है, कोई परेशानी है, कहाँ कोई समाधान नहीं हो रहा है, हम मूंझ रहे हैं क्या निर्णय लेना है, कोई ऐसी परिस्थिति जीवन की आ गई है जिसको सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे समय पर हम जरूर ईश्वर को याद करते हैं, फरियाद भी करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनसे सहयोग मांगते हैं, उनसे शक्ति मांगते हैं, और हम सबको वो अनुभव भी होता है। लेकिन हम कैसे परमात्मा के साथ ऐसा निजी संबंध जोड़ें जो हर पल, हर क्षण, हर श्वास में उसकी याद साथ में समाई हुई हो, वो नेचुरल स्वरूप में याद रह जाए। जैसे आज हमें अपने परिवार को याद करना, हमारे कारोबार में जो हमारे समीप साथी हैं उनको याद करना, बिजनेस में आपके जो साथी हैं, पार्टनर हैं, जिनके साथ काम करते हैं, आपके जो निजी क्लाइंट्स हैं, जो क्लोज हैं, जिनके साथ वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, उनको याद करना मुश्किल है? मुश्किल है? सहज है ना? आप अपने परिवार को याद करना सहज है ना? माता पिता को याद करना, बच्चों को याद करना सहज है ना? आप में से सभी का मन बच्चों के पास पहुंच गया, जैसे बच्चा कहा तो मन उनके पास पहुंच जाता है, बुद्धि से उनको देख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं ना बच्चों को, इस समय क्या कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो सेकंड में हमारी मन बुद्धि उनके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि वो संबंध की बहुत समीपता है। इसी प्रकार से हम परमात्मा की याद भी इतना सहज कर सके, और परमात्मा के साथ ऐसा संबंध जुड़े जो हम हर दिन उनसे जो प्राप्त की हुई शिक्षाएं हैं उसको भी अपने जीवन में धारण करें। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान को मानने वाले सभी हैं, सभी है ना? भल कोई कोई कहते भी हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, एथिस्ट हैं, लेकिन वह भी दिल में उसको याद करते हैं जब परीक्षा का समय आता है। तो भगवान को मानने वाले सभी हैं, लेकिन भगवान की मानते हैं, भगवान की मानते हैं सदा, क्या कहेंगे? तो वहां थोड़ा प्रश्न आ जाता है। तो कैसे परमात्मा से हमारे मन बुद्धि का योग जुड़ जाए जो हम उनसे ऐसी शक्तियां अनुभव करें, जो वो हमें जो शिक्षा दे रहा है, जो हम जानते हैं कि इसमें हमारा बहुत कल्याण है, वो शिक्षा को हम जीवन में धारण भी कर सके, भगवान की मानना भी, भगवान का मानना भी शुरू करें। तो उस रूप में परमात्मा ही स्वयं आकर अपना परिचय देता है, क्योंकि वैसे भी किसी व्यक्ति की सारे परिचय की डिटेल्स, सारी जानकारी उसके बारे में किसके पास होगा? हम सबके बारे में हमारे आसपास रहने वाले कुछ न कुछ तो बता सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी डिटेल्स जीवन की किसके पास है? हमारे पास है, है ना? हम ही अपना संपूर्ण परिचय दे सकते हैं। इसलिए परमात्मा ही आकर स्वयं अपना संपूर्ण परिचय देते हैं, और उस परिचय के आधार से जब हम उनको याद करते हैं तो उसको हम राजयोग कहते हैं, उस यथार्थ परिचय के साथ। तो जब हम देखते हैं कि हम उनको याद करते हैं, तो आज हम देखते हैं हर एक अपने अपने धर्म के अनुसार जो उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की है धर्म गुरुओं से, तो उस आधार से हम अपने अपने भाव से, अपने अपने विधियों से, अपने अपने रिचुअल्स और कस्टम्स से उनको याद करते हैं। लक्ष्य हमारा है कि हम उस एक से मन बुद्धि को जोड़ें। हम देखते हैं कि जब हम आपस में भी संबंध में आते हैं तो हम सब आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम सब मनुष्य आत्माएं हैं। मनुष्य आत्माएं अनेक हैं। उन्हीं मनुष्य आत्माओं में जब दैवी गुणों की धारणा हो जाती है, उनमें दैवी गुण आ जाते हैं, तो उन मनुष्यों को हम देवता कहते हैं, संपूर्ण पवित्र देवताएं। और उन देवी देवताओं की हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, पूजा करते हैं ना? तो हम देखते हैं देवी देवताएं भी अनेक हैं। भारत की संस्कृति में हम देखते हैं देवताओं का गायन और पूजन है, तो कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो देवी देवताएं भी अनेक है। यहाँ हम जीवन में देखते हैं कि कई बहुत महान कार्य करके गए हैं, तो ऐसी महान आत्माएं भी अनेक हैं। कई आत्माएं को विशेष कार्य करती हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य करती हैं, तो हम कहते हैं उनको श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं। इसी रूप से कई बहुत पुण्य का कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों को सहयोग देते हैं, तो हम कहते हैं पुण्य आत्माएं भी अनेक। और परमात्मा के लिए हम क्या कहेंगे, परमात्मा अनेक या परमात्मा एक, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? दोपहर का समय ना, इसलिए बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए क्या कहेंगे परमात्मा के लिए, अनेक या एक? एक। क्यों? क्योंकि जब हमने परम शब्द का प्रयोग किया, परम आत्मा, तो परम शब्द का अर्थ क्या है? परम अर्थात ही ऊंच से ऊंच, सर्वोच्च, सुप्रीम। और इसलिए जब हम उनको परमात्मा कहते हैं, इसका अर्थ ही है कि वो ऊंच से ऊंच परमात्मा है। तो वो किन विशेषताओं में सभी से ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है? तो ऐसे तो परमात्मा की बहुत सारी महिमा है और बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम पांच मुख्य विशेषताएं जरूर देखेंगे जिनके वजह से हम देखते हैं कि परमात्मा को हमने परमात्मा कहा और उनको दिल से हम याद करते हैं। पहली विशेषता है कि वो सर्वोच्च है, इसलिए गायन किया गया है कि ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका काम, ऊंचा उसका धाम, ऊंच से ऊंच भगवान। तो नाम ऊंचा अर्थात उनकी महिमा ऊंची। जब भी हम परमात्मा की महिमा करते हैं तो उनकी उपमा सागर से की जाती है। जैसे कोई मनुष्य में भी कोई अच्छे गुण हैं, आपका कोई मित्र है, वो बहुत शांत स्वभाव का है, तो आप कहेंगे ये बहुत शांत है, ये बहुत धीरज वाला है। लेकिन क्या हम उसको शांति का सागर कह सकते हैं, कह सकते हैं मित्र को या कोई और परिवार के सदस्य को? नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर शांत स्वभाव वाला भी हो, लेकिन शायद जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है, कोई ऐसे संबंध में टकराव हो जाता है जो उसका मन भी अशांत हो जाए, वो भी हलचल में आ जाए, उसको भी गुस्सा आ जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर गुण हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए कहा गया है वो गुणों का सागर है, सर्व ऊंच, उसकी महिमा सागर के समान है। सागर क्यों कहा उसको? शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। सागर क्यों कहा? सागर की क्या विशेषता है जी? बेहद है, अनलिमिटेड है, अखंड है। तो इसलिए हम देखते हैं परमात्मा हर गुण और शक्ति में बेहद रूप में है, अनलिमिटेड है उनके पास वो गुण, वो शक्ति बेहद स्वरूप में उनके पास है। जितना हम लेना चाहें उनसे, वो गुण और शक्ति को अपने अंदर भर सकते हैं, क्योंकि वो बेहद है, वो अनलिमिटेड ऊर्जा है उनके पास। इसलिए उनकी उपमा हमने सागर से की। तो परमात्मा का नाम ऊंचा है, लेकिन नाम के साथ साथ कार्य भी बहुत ऊंचा है। मनुष्यों के हम देखते हैं कई बार नाम जरूर अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन कई बार कर्तव्य उसके समान नहीं होते। जैसे हम देखते हैं कि कहां बहनों का नाम शांति बहन भी है, लेकिन थोड़ा वो भी अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, नहीं? या कोई का हम भाई का नाम देखते हैं लक्ष्मी नारायण भी है, लेकिन धन की कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो हम देखते हैं कि नाम और कर्तव्य या काम दोनों में अंतर जरूर हो जाता है। परमात्मा का जितना ऊंचा नाम, उतना ही ऊंचा कर्तव्य है। तो ईश्वर का ऐसा कौन सा कर्तव्य, अनेक कर्तव्य है, लेकिन ऐसा कौन सा कर्तव्य जो आपको बहुत प्रिय है? आप उस कर्तव्य के आधार से जब उनको याद करते हैं तो आपको उनसे वो सुख मिलता है, वो प्राप्ति का अनुभव होता है। तो ईश्वर का कौन सा कर्तव्य आपको बहुत प्रिय है जी, बताइए? सुख देने वाला। अच्छा, सुख दाता है। और कौन सा कर्तव्य है जी? प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है। और उसका प्यार कैसा है? निस्वार्थ है, निर्मल है, शुद्ध है, अनकंडीशनल है, सदा के लिए है और हमें पवित्र बनाने वाला है। इसलिए हमने उसको पतित पावन भी कहा, प्योरिफायर। नहीं, आजकल हम स्वास्थ्य से संबंधित अपना ध्यान रखते हैं जो बहुत अच्छा है, शरीर को स्वस्थ रखना, स्वस्थ जीवन शैली धारण करना। तो कई बार हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं कि भाई शरीर में जो टॉक्सिन्स आदि है वो निकल जाए, वो क्लेंजिंग हो जाए, जाते हैं ना शरीर के क्लेंजिंग के लिए। ऐसे ही आत्मा के अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। तो आत्मा के अंदर कौन सी अशुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है, टॉक्सिन कौन से हैं? क्रोध है, आवेश है, अहम भाव है, चिंता का स्वभाव है, दुख लेना, दुख देना, ये स्वभाव है, ईर्ष्या का स्वभाव है। तो ये सारे जो आत्मा के अंदर टॉक्सिन्स हैं या आत्मा के अंदर किचड़ा है, उसको शुद्ध करने वाला, उसको परिवर्तन करने वाला परमात्मा पतित पावन है। तो परमात्मा का ये कर्तव्य जो है वो भी बहुत ऊंचा है। फिर तीसरा हम देखते हैं कि कर्तव्य के साथ साथ धाम भी ऊंचा है। तो हर एक धर्म में परमात्मा की जहां भी महिमा की हुई है, तो हर एक धर्म में परमात्मा को ऊपर के तरफ दिशा दी गई है। हिंदू धर्म में भी हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, क्रिश्चियन धर्म में भी कहा जाता है ओ गॉड अबव, गॉड फादर अबव, रिमेम्बर हिम। हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई बहन भी जब नमाज पढ़ते हैं तो उनकी दृष्टि भी ऊपर के तरफ चली जाती है, अल्लाह को, श्रेष्ठ श्रेष्ठ को याद करते हैं। फिर हम देखते हैं कि साइंस के द्वारा भी जो खोज हो रही है वो ऊपर के तरफ, क्योंकि इस धरनी के अंदर तो क्या है, क्या है धरती के अंदर, मिट्टी है, ये जो भी धातु है वो सब है, मिनरल्स हैं, जो भी सृष्टि की एग्जिस्टेंस है वो इससे बियॉन्ड है, इससे परे है। इसलिए साइंस की सारी खोज इससे परे है। तो साइंस के द्वारा ही हम इस थ्री वर्ल्ड्स के बारे में, तीन लोकों के बारे में जानते हैं। परमात्मा भी आकर हमें इन तीन लोकों का रहस्य बताते हैं। तो साइंस के हिसाब से ये तीन वर्ल्ड्स को लाइट के स्पीड के अनुसार उन्होंने बताया है। तो एक ऐसी सृष्टि वो कहते हैं जहाँ हर एक चीज लाइट की स्पीड के नीचे चलती है, अंडर लुमिनस वर्ल्ड। जो परमात्मा हमें परिचय देते हैं कि ये है साकार दुनिया, ये साकार लोक, कर्म क्षेत्र, जहाँ हम आत्माएं इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं। दूसरी दुनिया अर्थात दूसरा लोक है जहाँ साइंस कहता है कि हर एक चीज लाइट की स्पीड के पैरेलल चलती है, उन्होंने उसको लुमिनस वर्ल्ड कहा। परमात्मा आकर हमें परिचय देते हैं कि ये सूक्ष्म लोक है जहाँ हर एक चीज लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए वहाँ आवाज नहीं है, वहाँ आवाज की भाषा नहीं है, संकल्पों की भाषा है। जैसे हम ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स करेंगे, आप वापस जाकर भी जुड़े रहेंगे सेंटर्स के साथ, तो उसके बाद हमारे बहुत सुंदर रोज के आध्यात्मिक प्रशिक्षण है, शिक्षा है, डेली स्पिरिचुअल स्टडी है, जिसपे इसके बारे में और अच्छी तरह से विस्तार से हम समझ सकेंगे। और तीसरा लोक, तीसरी दुनिया जो है जहाँ हर एक चीज लाइट के स्पीड के बियॉन्ड चलती है, साइंस के द्वारा सुपर लुमिनस वर्ल्ड, जो परमात्मा ने आकर हमें ये परिचय दिया कि वो परम धाम है जो सभी धामों से परे, शांति धाम, जहाँ आत्माओं का निवास स्थान है और परमात्मा का निवास स्थान है। तो इसलिए परमात्मा का रहने का स्थान भी ऊंच से ऊंच, इसलिए उसको सर्वोच्च कहा गया है। फिर दूसरा हमने देखा कि उनको सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला भी कहते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न हमें पूछते हैं, हमें उसके पास उसका उत्तर नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति बार बार हमें पूछ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, भाई हमें नहीं पता, भगवान जाने, कहते हैं आई डोंट नो, गॉड नोस, मुझे नहीं पता, भगवान जाने कह देते हैं कई बार। लेकिन भगवान क्यों जाने, क्यों जाने हर चीज, वही क्यों जाने? सहजता से तो हमने कह दिया। यहां हम समझते हैं कि परमात्मा को हम रचयिता कहते हैं, तो रचयिता ही रचना की सारी जानकारी जानता है, रखता है और बताता है। इसलिए बच्चों को भी जब स्कूल में आप डालते हैं, उसके बाद स्कूल में अगर कोई भी प्रश्न है टीचर को, कुछ भी बातचीत करनी है बच्चे के बारे में, तो किसको बुलाते हैं? पेरेंट टीचर्स मीट होता है खास हर 3 महीने, हर 6 महीने में परफॉर्मेंस के लिए, तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है। क्यों पेरेंट्स को बुलाते हैं? क्योंकि वही बच्चे के बारे में जानते हैं और जिम्मेवार है, रचयिता है। परमात्मा भी सृष्टि का रचयिता है, हम आत्माओं का मात पिता है, इसलिए वो इस सृष्टि रूपी रचना का ज्ञान जो है, सत्य परिचय जो है, वो भी परिचय सत्य ज्ञान देता है और स्वयं का भी परिचय हमें देता है। और इसलिए उसको कहा गया है कि वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। तीसरा हम देखते हैं उसको सर्वोपरि भी कहा, कि सर्व बंधनों से परे, सर्व प्रकार के प्रभावों से परे। अब परमात्मा स्वयं अगर बंधनों से परे नहीं होगा तो हमें बंधन से छुड़ाने वाला कौन? जैसे अगर कोई डूब रहा है तो वो दूसरे डूबने वाले को तो नहीं बचा सकता, लेकिन जो किनारे पर है वो उसको सहयोग दे सकता है, रस्सी फेंक सकता है, अपना हाथ दे सकता है, उसको बचा सकता है। ऐसे ही परमात्मा स्वयं इस जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए गीता में लिखा गया है अपना परिचय देते हुए, उनके शब्द बहुत सुंदर हैं कि मैं अजन्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। अजन्मा अर्थात मनुष्य समान जन्म और मरण के चक्र में नहीं आता। अब आत्मा जो है वो जन्म और मरण के चक्र में आती है ना। हमने आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, हमारा जन्म हुआ, आज हमारी इतनी आयु है, तो अब हमारे जन्म के बाद हमारी मृत्यु भी निश्चित हो गई ना। आत्मा को कभी ना कभी शरीर छोड़ना है, तो ये शरीर छोड़ना, इसी को हमने मृत्यु कहा। तो जन्म और मृत्यु ये एक साइकिल हो जाता है, एक चक्र हो जाता है, कहीं ना कहीं आत्मा के लिए ये एक बंधन है। तो इसलिए जब आत्मा ने शरीर स्वीकार किया है तो उसको कर्म भी करना है। कर्म करना है, हम कर्म सारा दिन सुबह से रात तक करते रहते हैं, तो कर्म करने के बाद कर्म का फल भी होता है। साइंस कहता है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो हर कर्म का फल होगा। अच्छा, कुछ हमारे कर्म तो बहुत अच्छे होते हैं, हमें खुशी भी होती है, हमारा मनोबल भी उस कर्मों से बहुत मजबूत हो जाता है। वो कौन से कर्म होते हैं? श्रेष्ठ कर्म। उसका फल क्या होता है? श्रेष्ठ कर्मों का फल खुशी होती है, शक्ति मिलती है, परमात्मा से ब्लेसिंग मिलती है, हमारा पुण्य कर्म जमा हो जाता है, सुख मिलता है। और कुछ हमारे कर्म न चाहते भी विकर्म बन जाते, बुरे कर्म हो जाते, तो उसका फल क्या मिलता है? बुरे कर्म का फल क्या मिलता है? दुख, अशांति। तो हम देखते हैं कि आत्मा जो है वो जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख, ये चक्र में आती है। परमात्मा के लिए गायन किया गया है वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। अब साइंस ये एक और सुंदर एक उनका तथ्य है, लॉ है, जिसको लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, जिसको अगर सहज भाषा में हम समझें कि कोई भी सिस्टम है, वो सिस्टम जो है वो जब संपूर्ण ऊर्जा में है, अब वो सिस्टम का पूरा उपयोग किया जा सकता है, वो 100% ऊर्जावान है, और जैसे उस सिस्टम को आप प्रयोग करना आरंभ करते हैं तो क्या होता है? उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी? क्या होगा? घटती जाएगी, क्योंकि अभी आप उसको यूज कर रहे हैं। तो कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम को यूज करो तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाएगी। जब एक ऐसा समय आता है जब अब उसकी ऊर्जा बहुत कम है, न के बराबर, जीरो के तरफ जा रही है, तो क्या करना होता है? लॉ ऑफ एंट्रोपी ये कहता है कि अब उस सिस्टम को फिर से अगर ऊर्जावान बनाना है, उसको फिर से सशक्त करना है, तो उसे एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना होगा। और ये डेली हम सिस्टम को अप्लाई करते हैं हमारे मोबाइल में, जैसे डिस्चार्ज होता है तो क्या करते हैं? चार्जिंग पर रखते हैं ना। आज सुबह चार्जिंग पर रखा सबने? रखा था? हाँ, नहीं तो कई लोग फिर रात को चार्जिंग पर रखते हैं, या तो अगर सारा दिन बिजी रहने वाले हैं तो क्या करते हैं? ऑफिस में भी चार्जर रखते हैं, रखते हैं ना, सबके पास है ना, ऑफिस में भी रखा है ना, और गाड़ी में भी रखा है, हाँ, पावर बैंक भी है, नहीं? तो इसको जैसे चार्ज करने के लिए हमने जिम्मेवारी ली, तो इसको हम बार बार चार्ज करते हैं। ऐसी आत्मा की भी ऊर्जा जैसे जैसे समय अनुसार डिस्चार्ज हो गई है, उसको चार्ज करने के लिए वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी परमात्मा है। उनका वो ये विशेष रोल है कि वो सभी आत्माओं की ऊर्जा को फिर से चार्ज करता है। अब कौन सी ऊर्जा डिस्चार्ज हो गई आत्मा की? आज सुबह हमने लेसन में सीखा गीता दीदी से, आत्मा के ओरिजिनल गुण कौन से, आत्मा के नेचुरल गुण कौन से, मूल स्वभाव कौन सा? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और दूसरा जी, बहने बताएं, माताएं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। और मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूं। और आनंद स्वरूप आत्मा हूं। और भाई भी बता सकते हैं जी, याद तो है ना, सुबह का ही सेशन था। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। अच्छा, और मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा। तो आत्मा का ये सातों गुण, उसका मूल स्वभाव, उसकी ओरिजिनल वर्चूज हैं, इसकी ऊर्जा आज डिस्चार्ज है। आज हर परिस्थिति में हम शांत नहीं रह पाते। शांति हमारे अंदर है, हमारा स्वभाव है, ये हम जानते हैं। लेकिन जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती तो उस समय हमारा मन शांत नहीं रह पाता है। हम जानते हैं कि हम स्नेह स्वरूप हैं, वैसे तो हर एक के लिए शुभ भावना हमारी है, लेकिन जो व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, जब वो सामने आ जाता है या उसके बारे में कोई कुछ कहता है, तो हमारे मन में उनके प्रति स्नेह की भावनाएं नहीं आ पाती, शुभ भावनाएं, क्षमा भावनाएं नहीं आ पाती, तो स्नेह की शक्ति नहीं है। तो आत्मा की ऊर्जा जब डिस्चार्ज होती है तो उसको रिचार्ज करने के लिए किसके साथ कनेक्ट करना होगा? परमात्मा। तो वो रोल उनका विशेष है, इसलिए वह इस जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। और चौथी बात, वो सर्व गुण और शक्तियों का स्रोत है। ये सात गुण तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो भी आत्मा को प्राप्ति करनी है, परमात्मा ही सर्व प्राप्तियों का स्रोत है आत्मा के लिए। वो जिम्मेवार भी है, वो स्रोत भी है, अविनाशी भी है, अविनाशी इटर्नल सोर्स है। और पांचवी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हम सर्व आत्माओं का पिता है। तो उनका परिचय कैसा है? सर्वमान्य। उनका ऐसा परिचय होगा जो हर एक आत्मा दिल से कहे कि यही परमात्मा है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे धर्म पिताओं ने भी हमें उस एक परमात्मा के परिचय के लिए दिशा दी, गाइडेंस दिया। तो हम थोड़ा सा भ्रमण करेंगे हर एक धर्म में। तो क्रिश्चियन धर्म में चले जाते हैं, वहां भी क्राइस्ट ने क्या कहा है? परमात्मा स्नेह की ज्योति है, गॉड इज लाइट। अर्थात परमात्मा स्नेह स्वरूप है। और इसलिए आप देखिए, वहां जब जाते हैं चर्च में तो कैंडल जलाते हैं, लाइट स्वरूप। जब क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया तो उसने क्या कहा? ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे ईश्वर, इनको माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया। उन्होंने ईश्वर को कहा कि इन्हें माफ करना। उन्होंने स्वयं का परिचय क्या दिया? मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का बच्चा हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं ईश्वर का मैसेंजर हूं, संदेश लेकर आया। तो वहां भी बहुत प्यार से उन्होंने हमें उस एक ईश्वर के तरफ, उस निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के तरफ दिशा दी। सिख धर्म में भी गुरु नानक जी ने भी हमें उस निराकार की याद दिलाई कि वो निराकार है, निर्वैर है, सत्श्री अकाल है, निराकार है, जिसका शरीर रूपी आकार नहीं है। जैसे अगर ये हॉल बहुत सुंदर है, मैं कहूं कि ये हॉल जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं इससे कंपेयर करूं एक छोटे हॉल से। हमारा एक दूसरा गुणमोती हॉल है, मेडिटेशन हॉल, उससे मैं अंतर करूं तो ये हॉल मुझे बड़ा लग रहा है। लेकिन कोई कहेगा नहीं नहीं दीदी, ये हॉल तो छोटा है। मैं कहूंगी हाँ छोटा है, क्योंकि अगर इसको खोल दिया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा है। तो ये हॉल ना छोटा है ना बड़ा है, ये दोनों क्या है? अंतर के शब्द है। ऐसे ही निराकार और साकार, ये अंतर के शब्द है। साकार माना शरीरधारी, हम सबके पास शरीर है, तो हम शरीरधारी साकार हैं, और आत्मा कैसी है? निराकार है। अब परमात्मा किसका पिता है, शरीर का या आत्मा का? आत्मा का। शरीर के पिता हम सबके अलग अलग हैं, नहीं कोई भाई बहन बैठे हैं तो एक ही होगा, लेकिन हम आत्माओं का पिता वो एक निराकार है, जिसका फिर हम देखते हैं गुरु नानक जी ने उसके तरफ इशारा किया कि उस निराकार को याद करना है, सत श्री अकाल, जो सत्य है, जो अकाल है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, जिसको मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता है, इतनी शक्ति और इतना सुंदर ज्ञान है उसके पास। तो उन्होंने भी उस निराकार के तरफ हमारे बुद्धि को दिशा दी। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो इस्लाम में मुस्लिम भाई बहन हैं, वो भी नूरे इलाही को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह का अर्थ भी है सबसे ऊंचा, सबसे ग्रेट, और नूरे इलाही, नूर का अर्थ है, नूर अर्थात रोशनी, लाइट। तो नूरे इलाही, अल्लाह का नूर, डिवाइन लाइट, इटर्नल लाइट। तो वहां भी हम देखते हैं उस निराकार रूप में ही उनको याद किया जाता है, सुप्रीम रू कहते हैं। हम देखते हैं कि यहूदी जो है, जू धर्म जो है, जूस का, वहां मोसेस ने भी साक्षात्कार किया एक वृक्ष का, बर्निंग ट्री, जेहोवा, अर्थात उस वहां भी रोशनी के रूप में उन्होंने साक्षात्कार किया, और उस रोशनी से उन्हें शक्ति मिली जिससे उन्होंने 10 कमांडमेंट्स लिखे, जो उन्होंने कहा कि परमात्मा की शिक्षाएं हैं। तो वहां भी निराकार रूप में परमात्मा का वर्णन किया गया है। फिर हम देखते हैं हमारे पारसी भाई बहन किसको याद करते हैं, अग्यारी, उनका फायर टेम्पल होता है, तो किसको याद करते हैं, अग्नि को याद करते हैं, वह अग्नि स्वरूप में परमात्मा को याद किया जाता है। हमारे जो हम देखते हैं बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध स्वामी जी है, हम जैन धर्म में देखते हैं कि महावीर स्वामी है, जो उनके 24 तीर्थंकर हैं, सभी को किस स्वरूप में दिखाया गया है, तपस्या के स्वरूप में। तपस्या कर रहे हैं गौतम बुद्ध जी भी, क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। महावीर स्वामी जी भी क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं, तपस्या करना माना तप करना, मन बुद्धि को उस परमात्मा की याद में ले जाना, तो वो तपस्या उस ईश्वर की कर रहे हैं। तो वहां भी हम देखते हैं कि उन्होंने दिशा मेडिटेशन के द्वारा, तप के द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात कही है। तो हम देखते हैं कि सभी धर्म पिताओं ने भी हमें उस निराकार के तरफ इशारा दिया। अब हिंदू धर्म में तो हमने देखा 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो वहां तो सभी साकार स्वरूप में स्वरूप है, देवताओं का अनेक देवताएं हैं, लेकिन वहां भी एक निराकार स्वरूप जरूर है। कौन सा है जिसकी हम भक्ति करते हैं, निराकार स्वरूप कौन सा है, शिवलिंग का। और वहां हम देखते हैं कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, उसमें भी जो शब्द, हर एक मंदिर का जो नाम है, वो शब्द में या तो ईश्वर है या तो नाथ है, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, रामेश्वरम, अमरनाथ, तो नाथ अर्थात लॉर्ड, ऊंचते ऊंच, और फिर ईश्वर अर्थात वह भी ऊंचते ऊंच परमात्मा। तो वहां भी हम देखते हैं कि जो अलग अलग मंदिर हैं, हर एक नाम परमात्मा के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। सोमनाथ, तो सोमनाथ अर्थात सोम रस पिलाने वाला। सोम रस किसको कहा जाता है, अमृत को कहा जाता है। तो अमृत के लिए गायन है कि जब कोई व्यक्ति ने का देहांत हो गया है, किसी ने शरीर छोड़ दिया, उनको अगर ये अमृत पिलाया जाए तो उसको जीवदान मिल जाता है। तो स्थूल रूप में तो नहीं, लेकिन मन से अगर हम देखें तो आज व्यक्ति अपने जीवन में बहुत थका हुआ है, कई बार निराशावादी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, दुखी हो जाता है, जीवन के लिए उसको कोई भी उमंग उत्साह नहीं है। तो फिजिकली तो शारीरिक रूप में तो जागरूक है, अलाइव है, लेकिन मन से जीवन के प्रति कोई उमंग उत्साह नहीं है। ऐसे जीवन जो मृत्यु के समान जीवन, ऐसे दुख वाली जीवन में परमात्मा जो हमें ज्ञान देता है, ज्ञान का अमृत पिलाता है, जो हमें जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल देता है, हमें शक्ति देता है, हमें उस जीवन में एक नई राहत बताता है, हमें उस परिस्थिति से सीखकर और सक्षम बनाकर आगे बढ़ाता है। तो ज्ञान का सोम रस पिलाने वाला और नया जीवन दान देने वाला सोमनाथ, रामेश्वरम हम देखते हैं जहाँ उस राम ने भी उस निराकार की पूजा की, देवताओं ने भी निराकार शिव की पूजा की है, अमरनाथ जो हमें आत्मा का ज्ञान देकर अमर बनाने वाला नाथ। तो शरीर हम समझते हैं कि उसकी मृत्यु होगी, लेकिन आत्मा तो अजड़ अमर अविनाशी। और मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेसन पक्का किया ना सुबह? लेसन पक्का हो गया? मैं कौन हूँ, शरीर हूँ या आत्मा हूँ? आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा कैसी हूँ? अविनाशी हूँ। आत्मा अमर अजड़ अविनाशी है। तो वो अमर आत्मा का ज्ञान समझाने वाला, हमें अंतर से निडर निश्चिंत बनाने वाला अमरनाथ, बबूलनाथ। मुंबई में ये मंदिर है, तो बबूल जो वृक्ष है वो कांटों वाला है, नहीं वैसे तो बहुत अच्छा वृक्ष है, जड़ी बूटी जैसा है। बबूल जो है दातून के रूप में भी यूज होता है, लेकिन कांटे हैं उसमें। तो आज हम देखते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव, कोई ना कोई थोड़े बहुत हमारे पास कुछ कमजोरियां तो है ना, है कमजोरियां, थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या है, थोड़ा थोड़ा दुख देना या लेने का स्वभाव है। तो ऐसे कांटों समान जीवन जो है, जहां हम स्वयं दुखी होते हैं औरों को भी कई बार दुख देते हैं, ऐसे हमारे संस्कारों को बदलने वाला, ऐसे कांटों को भी फूल बनाने वाला, फूल अर्थात सुखदाई। कहां भी खुशी का प्रतीक है तो हम फूल ले जाते, श्रद्धा का प्रतीक है तो फूल ले जाते। तो हमारे अंतर में हमें दुख देने वाले हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर हमें सुखदाई बनाने वाला वो बाबुल नाथ है। तो ऐसे हम देखते हैं कि इस समय परमात्मा हमें ये बहुत सुंदर ज्ञान की समझ देता है कि हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप समान है। वो निराकार स्वरूप है, हम आत्माओं का पिता है, वो भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जैसे आत्मा भी निराकारी है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो समानता है स्वरूप में, गुणों में वो सागर के समान है, शक्तियों में वो सागर के समान है, स्रोत है। परमात्मा हमें ये भी परिचय देता है अपना कि उसके पास जो गुण और शक्तियां हैं वो हमें वो वर्से के रूप में देता है, इनहेरिटेंस के रूप में देता है। जैसे अगर आपके पास गाड़ी है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, वो उसका हकदार कौन हो जाता है? आपके बच्चे। बाहर अगर गाड़ी रखी भी है कंपाउंड में, तो कोई पूछेगा बच्चे को ये किसकी गाड़ी है, तो ये कहेगा कि डैडी की है या कहेगा मेरी है? क्या कहेगा, क्या कहेगा? मेरी है, डैडी की है नहीं कहेगा, मेरी गाड़ी है। नहीं, क्यों? उसको इतना अधिकार कैसे मिल गया कहने का कि मेरी गाड़ी है? क्योंकि वो बालक सो मालिक है, वारिस है। ऐसे हम शिव बाबा के, परमात्मा के बच्चे हैं, तो उनके हर गुण और शक्ति के मालिक हैं। ये परिचय परमात्मा हमें देता है कि मैं जो गुण और शक्ति का सागर हूं, तुम भी मेरे समान स्वरूप हो। परमात्मा अगर शांति का सागर है तो मैं आत्मा कैसी हूं? शांत स्वरूप हूं, शांति के गुण से भरपूर हूं। तो अब मुझे परमात्मा से शांति मांगना नहीं है, क्या करना है? मेडिटेशन में, योग अभ्यास में परमात्मा से वो शांति की शक्ति को अपने अंदर भरना है, मैं शांत स्वरूप हूं ऐसा अनुभव करना है। तो ये भी बहुत सुंदर परमात्मा हमें समझ देता है कि हर गुण और शक्ति में हम उसके जैसे हैं। और जैसे हमने अपने आप को परमात्मा के जैसा निराकारी स्वरूप में स्थित किया और उस परमात्मा को भी उस निराकारी स्वरूप में देखा, उसे याद किया, उसके हर गुण और शक्ति को महसूस किया, उसके परिचय को, उसकी महिमा को याद किया, और उन शक्तियों और उस महिमा के समान वो हमें भी बना रहा है, वो स्मृति जागृत किया, तो हमें वो बहुत सुंदर कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। वैसे भी साइंस कहता है कि जब दो ऊर्जाएं मिलती है तो ऊर्जा का संचार कहाँ से होता है? हायर एनर्जी टुवर्ड्स लोअर एनर्जी। तो जैसे हमारी मन बुद्धि उस शांति के सागर से जुड़ जाती है, पवित्रता के सागर से जुड़ जाती है, तो उनकी शक्तियां वो धीरे धीरे मुझ आत्मा में समाती जाती है। परमात्मा आकर अपना परिचय जब देते हैं तो हमें अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम शिव है। अब शिव शब्द अगर हम देखें तो कोई धर्म से जुड़ाव नहीं है, लेकिन अगर संस्कृत भाषा में देखें, क्योंकि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। हर एक भाषा में कुछ न कुछ संस्कृत शब्द समाये हुए हैं। अब संस्कृत शब्द में शिव का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है शिव का? सुना है कभी आपने? शिव का अर्थ संस्कृत में है बिंदु। इसलिए कई पुराने समय में जब बिजनेस करते थे तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते थे तब कहते थे डालो शिव, अर्थात बिंदु डालो या जीरो डालो, तब ये शिव शब्द यूज करते थे। दूसरा अर्थ है बीज, अर्थात हमारा उनके साथ क्या संबंध है? वो रचयिता है, बीज है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज, चैतन्य बीज, हमारा रचयिता, हमारा माता पिता। और तीसरा शिव का अर्थ है कल्याणकारी। इसलिए कहते हैं ना शुभ शुभ बोलो, शिव शिव बोलो। तो शिव शिव बोलो यहाँ उस अर्थ से कह रहे हैं कि शिव शिव बोलना माना शुभ शुभ बोलना, कल्याणकारी बोलना। तो हम देखते हैं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदु स्वरूप, उनका हमारे साथ संबंध वो बीज स्वरूप है, रचयिता है, माता पिता है, और तीसरा उनका कर्तव्य वो कल्याणकारी है। वो तीनों ही एक शब्द में समाये हुए, इसलिए परमात्मा ने आकर अपना नाम शिव हमें बताया है। और यहाँ हम जब भी आप सुनते होंगे हमारे वॉलंटियर भाई बहनों से भी, बहनों के भी वक्तव्य में कभी आप ये शब्द सुनते होंगे शिव बाबा शब्द, तो शिव बाबा हम बहुत प्यार से कहते हैं। वैसे भी आप कोई भी बिजनेस संभालते हो, आप कोई भी पद पर हो, कोई बहुत बड़ा पद भी हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो, लेकिन जब वो अपने परिवार में जाएंगे तो उनके बच्चे उनको किस रूप से याद करेंगे? चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, बच्चा कैसे याद करेगा? या तो माता या तो पिता, डैडी मम्मी कहेगा ना, क्योंकि उनके लिए तो वो माता पिता है ना। तो उसी रूप में परमात्मा है सर्वशक्तिवान, विश्व का रचयिता, विश्व का पालनहार, बहुत वही महिमा है। लेकिन हमारा कौन है? मेरा कौन है? माता पिता है। इसलिए हम उनको बहुत प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं और कई बार सिर्फ बाबा भी कहते हैं। तो बाबा शब्द से वो प्यार जो है, समीपता जो है, उसकी मिठास अनुभव होती है। जैसे आपके बच्चे आपको क्या बुलाते हैं? या तो मम्मी, डैडी, मम्मा, बाबा, डैडी, डैड, नहीं अलग अलग शब्द है ना, मामा, माँ, नहीं अलग अलग शब्द है ना। तो हर एक बच्चे का आप देखो अपने माता पिता के लिए एक अलग शब्द होता है। उस शब्द में क्या है? प्यार की महसूसता, वो समीपता की अनुभूति है। ऐसे यहाँ भी हम परमात्मा को बहुत प्यार से, उस संबंध की समीपता से बाबा कहते हैं। और इसलिए आप ये शब्द कई बार सुनते भी होंगे। हम ये भी कहते हैं मेरा बाबा, क्योंकि हमारा अपना है, उनके साथ निजी संबंध है। और हम देखते हैं कि जब हम इस समीपता से उनको याद करते हैं, बहुत प्यार से, दिल से याद करते हैं, तो वो याद का कनेक्शन जो है वो सहज जुड़ जाता है। क्योंकि परमात्मा है ही प्यार का सागर, तो जिस भाषा में हम उनको याद करते हैं, वो भाषा जब प्यार की भाषा होती है तो वो समीपता का अनुभव होता है। मैं एक छोटी सी कहानी हमको आपको सुनाना चाहती हूँ। हमारी बड़ी दीदियाँ भी वो कहानी हमें सुनाती थी और मुझे भी ये कहानी बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें परमात्मा से हमारी भावनाएं कैसे जुड़ती है उसका बहुत सुंदर परिचय हमें मिलता है। तो इसमें, इस कहानी में एक छोटा बच्चा है और ये बच्चा जो है थोड़ा नटखट है। आजकल हम देखते हैं बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है, यहाँ भी कुछ बच्चे आए हैं, है तो है एंजल्स लेकिन नटखट है। तो ये बच्चा जो है, ये इनका परिवार क्रिश्चियन धर्म की मान्यता में है, तो हर संडे चर्च में जाते हैं। अब ये बच्चा जो है वैसे तो सो जाता था, सुबह नहीं इतना जल्दी उठता था, लेकिन अगर वो उठ गया तो फिर वो इंसिस्ट करता था कि मुझे भी चर्च जाना ही है। तो वो मदर फादर को अकेले जाने ही नहीं देता, जिद करता था। अब उस दिन वो उठ गया था, माँ बाप से जिद किया उसने, तो माँ बाप लेके गए। अब वहाँ चर्च में कई बच्चे ऐसे आते भी थे, तो वहाँ चर्च में जो उनका मेन प्रेयर हॉल था उसके पीछे एक गार्डन था, तो वहाँ बच्चे खेलते थे। अब वहाँ ये छोटा बच्चा भी खेलने लगा, माता पिता तो प्रेयर के लिए अंदर हॉल में चले गए। कुछ समय के बाद उनकी प्रार्थना पूरी हो गई, उनका जो मॉर्निंग जो प्रार्थना का सेशन है वो पूरा हो गया। उसके बाद उनको कुछ आपस में कम्युनिटी सर्विस जो है करनी थी, एक्टिविटीज करनी थी सेवा की, तो वो कोई मीटिंग पीछे कर रहे थे। अब ये बच्चे ने देखा कुछ समय के बाद अभी तक मम्मी डैडी तो आए नहीं, तो वो फिर अपने मम्मी डैडी को ढूंढने लगा। तो वो गार्डन के से वो हॉल में चला गया, बहुत बड़ा प्रेयर हॉल था जैसे हम देखते हैं चर्च होते हैं। तो वो चर्च में गया, अंदर जैसे गया तो देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, आगे आगे गया तो वहां फिर लास्ट में एक दरवाजा था, वहां लिखा था कि नो परमिशन। अब छोटा बच्चा था तो वो तो दरवाजा खोल के अंदर चला गया। तो अंदर जो है वो जो उनका हेड प्रीस्ट है, जो मेन फादर है, वो वहां बैठे हुए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। तो ये बच्चे ने देखा, तो बच्चा नटखट था, तो उसने क्या किया, जैसे वो फादर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, उसने वैसे ही थोड़ा सा अपने आप को मिमिक्री करके वैसे ही अपना स्वरूप बना लिया। वो भी हाथ जोड़ने लगा और आंखें बंद कर रहा था, और बीच बीच में आंखें खोल के देख रहा था कि वो फादर देख रहा है मुझे या नहीं। कुछ समय के बाद वो फादर को ध्यान में आया कि ये कमरे में कोई और है। तो जब उसने आंखें खोली तो उसने ये बच्चे को देखा जो नटखट था, तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो उसने तुरंत उस बच्चे को डांटते हुए पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। बच्चा तो बहुत कॉन्फिडेंट था, तो उसने, अब बच्चा बोल रहा है तो थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो छोटे बच्चे ने कहा मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो फादर को और थोड़ा गुस्सा आया, उसने कहा तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो। तो बच्चे ने उसको पूछा फादर को कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो फादर जो है उसके हाथ में बाइबल तो था ही, तो उसने उस बाइबल में से बहुत अच्छी प्रेयर, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी ऐसी, बहुत अच्छी प्रेयर उन्होंने सुनाई, बहुत बड़े बड़े शब्द थे। तो फिर उसने बच्चे को कहा तुम कौन सी प्रार्थना कर रहे थे। तो बच्चे ने बहुत कॉन्फिडेंटली ABCDZ तक सुना दिया और वो हंस रहा था। तो फादर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने उसको डांटा और कहा कि ये प्रार्थना है, इसमें मजाक नहीं किया जाता है, भगवान को हम याद करें, ये प्रार्थना है, इसमें ऐसे नहीं किया जाता। तो बच्चे ने बहुत सहजता से एक बात कह दी, उसने कहा कि फादर आपकी जितनी भी प्रेयर है उस सब में A to Z के बीच में अक्षर है, मैंने भगवान को कहा कि तुम्हें जैसे जोड़ना है तुम जोड़ लेना। अर्थात हमारे शब्द, हमारे जो हम साधन अपनाते हैं, जो हम रिचुअल्स करते हैं, वो हमारा परमात्मा से उससे कनेक्शन जुड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे दिल की भावनाएं, हमारा अंतर का प्यार जो है परमात्मा के लिए। जैसे अगर आपको भी, आपके माता पिता हैं आप, तो आपके बच्चे जब आपको फादर्स डे या मदर्स डे पर मैसेज भेजते हैं ना, तो आजकल तो याद करते हैं और भेजते भी हैं, तो इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं फादर के लिए, मदर के लिए, तो वो मैसेज भेजते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर बच्चे ने अपने शब्दों में कुछ कहा, मम्मी आई लव यू, डैडी यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, तो वो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा या इंटरनेट का बहुत अच्छा बड़ा मैसेज जो है वो अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। जो बच्चे ने अपनी दिल की भाषा लिखी है वो भले एक ही सेंटेंस होगा, लेकिन वो आपको ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे की दिल की भावनाएं समाई हुई है आपके लिए। ऐसे ही यहां राजयोग के द्वारा परमात्मा को इस परिचय के साथ याद करते हैं, उनको बहुत प्यार से, दिल से याद करते हैं, अपने दिल की भावनाएं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनके साथ उस संबंध के रस को से याद करते हैं, तो वो याद हमारी बहुत शक्तिशाली भी हो जाती है और उस याद से परमात्मा से हमें बहुत प्राप्तियां भी महसूस होती हैं। तो यहाँ हम थोड़े समय के लिए उस परमात्मा को ऐसे ही यथार्थ रूप में उस दिल से, उस प्यार से याद करने का अभ्यास करेंगे। तो कुछ समय के लिए हम मन को उनके साथ जोड़ेंगे। जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ ना, तो मैं आपको देख भी रही हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ। बातचीत करने के लिए मुख का प्रयोग कर रही हूँ, देखने के लिए आंखों का, तब कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसा है ना? आप भी देख रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। ऐसे ही हम परमात्मा से जब बातचीत करेंगे, क्योंकि ईश्वर यहाँ हमें सिखाते हैं कि राजयोग को योग भी कहा जाता है, लेकिन सहज शब्दों में याद कहा जाता है। याद करना सहज है ना? तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा मन जो है वो मुख का काम करता है। हम मन से उनसे बातचीत करते हैं, अर्थात संकल्पों की भाषा, प्यार की भाषा। और किस रूप से देखते हैं? आत्मा का नेत्र कौन सा है? हमारी मन की आंखें जो है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि एक चक्षु का काम करती है। जैसे मैंने आपको बच्चों की बात कही, फादर्स डे मदर्स डे आपको विश करते हैं, तो आप बच्चों को देख रहे थे, आप में से कई बच्चों को देख रहे थे। तो यहाँ तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन कैसे हमने देखा? मन की आंखों से। तो यहाँ भी हम परमात्मा को उस मन की आंखों से देखेंगे। स्वयं को भी आत्मिक स्वरूप में मन की आंखों से देखेंगे। तो दोनों हम प्रयोग कर रहे हैं, मन और मन की आंख अर्थात बुद्धि। जैसे मोबाइल को चार्ज किया तो चार्जर से आपने उसको कनेक्ट किया, मोबाइल को कनेक्ट किया, फिर वो चार्जर को एक इलेक्ट्रिकल सोर्स में डाला। तो जब भी इलेक्ट्रिकल सोर्स में वो प्लग जाता है तो उसके अंदर दो पिन होती, वो दो पिन जो है इसी रूप से हम मन और बुद्धि को उस परमात्मा के साथ प्लग इन करते हैं। मन के द्वारा बातचीत करेंगे, संकल्प निर्माण करेंगे, उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, और बुद्धि के द्वारा विजुलाइज करेंगे। चलिए 2-3 मिनट के लिए इसका अनुभव करें। 2-3 मिनट के लिए हम बैठ जाते हैं, थोड़ा एकाग्रचित हो जाते हैं। अब कुछ समय में ही फिर मेडिटेशन के बाद आप भोजन के लिए जा सकेंगे। आप प्यार से इतना समय तक बैठे रहे हैं तो अब 2-3 मिनट और हम एकाग्रचित होकर बैठेंगे। कुछ समय के लिए मन और बुद्धि को हम बाहर के जगत से डिटैच करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं कुछ समय के लिए। अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने आप को देखते हैं, मन बुद्धि को बाह्य जगत से समेटकर अंतर की जगत को देख रहे हैं। हमने आज सुबह जान लिया है कि अंतर के जगत में मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूं। मन की आंखों से अपने मस्तक के मध्य में, मस्तिष्क के मध्य में एक शांति के स्थान को देखें, जहां मैं आत्मा एक सुंदर सितारे के रूप में चमक रहा हूं। मैं आत्मा एक दिव्य सितारा हूं, शांति का सितारा हूं। मन की आंखों से देखें कि मस्तक के मध्य में आत्मा रूपी सितारे से शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। ये शांति की सफेद लाइट, श्वेत प्रकाश मस्तक से लेकर सारे चेहरे में और सारे शरीर में भी प्रवाहित हो रही है। ये शांति की लाइट चारों तरफ फैल रही है। मेरे आसपास का वायुमंडल भी शांत और लाइट हो जाता है। मैं अंतर से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। इस शांति की अनुभूति में बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, सुकून का अनुभव हो रहा है। शांति की मनोस्थिति में स्थित रहते हुए अब कुछ समय के लिए हम मन और बुद्धि को उस शांति के सागर के पास ले जाते हैं। मन बुद्धि के विमान में बैठकर एक बहुत सुंदर यात्रा आरंभ करते हैं। मन की आंखों से देखें कि मैं आत्मा रूपी सितारा उड़ चला इस आवास की दुनिया से पार, इस देह की दुनिया से कारोबार, जिम्मेवारी, संबंध, इस दुनिया से पार उस प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सूर्य चांद सितारों से पार, अंतरिक्ष से भी पार वो प्रकाश की दुनिया, मन की आंखों से देखें वो सोनेरी लाल प्रकाश का महातत्व, परम धाम, शांति धाम, जहां मैं आत्मा पहुंच जाता हूं। यहां मैं आत्मा रूपी सितारा शांति की आभा में स्थित हूं और चारों ओर शांति ही शांति है। मुझ आत्मा के समान अनेक दिव्य सितारे, सुंदर सितारे चमक रहे हैं। हर एक सितारा शांति की आभा में स्थित है। ये सितारों की महफिल कितनी सुंदर लग रही है। और इन सुंदर सितारों के बीच एक अलौकिक सितारा, एक दिव्य सितारा मुझे अपनी ओर बुला रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ये सितारा परमपिता परमात्मा है। जैसे ही मैं मन से उस परमात्मा के सानिध्य में पहुंचता हूं, बुद्धि रूपी चक्षु से उस सुप्रीम लाइट को देख रहा हूं, परम ज्योति स्वरूप जो मेरे समान ही निराकार ज्योतिर्बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान है। परमात्मा बिंदु स्वरूप होते हुए उनकी आभा चारों तरफ फैल रही है। वो शांति का सागर है, सुख का सागर है। परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा को भी शांति के वाइब्रेशंस, शांति की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मेरा मन भी सभी प्रकारों की चिंताओं से मुक्त होता जाता है। अंदर में जो हलचल है, जो तनाव है, जो सूक्ष्म चिंता है, बोझ है, वो समाप्त हो जाता है। परमात्मा की असीम शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। परमात्मा पिता प्यार का सागर है। परमात्मा का निर्मल प्यार, शुद्ध निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल लव मेरे मन को, मेरे हृदय को सुकून दे रहा है, शुद्ध बना रहा है। परमात्मा का प्यार मुझे अंदर से सिक्योर और शक्तिशाली महसूस करा रहा है। मैं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर पिता के सानिध्य में हूँ, परमात्मा के प्यार की छत्र छाया में हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ एक सर्किल ऑफ डिवाइन लाइट बनकर, एक सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ है। मन की आंखों से देखें परमात्मा की गोल्डन लाइट, उनकी असीम शक्तियां, उनका असीम प्यार, उनकी असीम शांति एक सर्किल ऑफ डिवाइन लाइट बनकर आपके साथ है, आपको शक्ति दे रहा है, आपको अंतर से भरपूर कर रहा है। परमात्मा का वरदानों का हाथ मेरे मस्तक पर है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, सुरक्षित हूँ। परमात्मा की छत्र छाया में मैं सदा स्वस्थ हूँ, सदा निर्विघ्न हूँ। परमात्मा की असीम दुआओं को अपने अंदर समाते हुए, परमात्मा का असीम प्यार, उनकी बेहद की शांति को, उनकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए, अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए, हम फिर से अपने आप को यहाँ कर्म क्षेत्र पर देख रहे हैं। मन बुद्धि से फिर से यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। अपने आप को यहाँ कारोबार के लिए उपस्थित करते हैं। आंखें अगर बंद हैं तो आंखों को खोल देते हैं। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत थैंक्स दीपाबेन को, थैंक यू आप सभी को भी, बहुत पेशेंस से शांति से बैठ के सुन रहे हैं। हमको यकीन है आप जरूर लाभ ले रहे हैं।